नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक विकास मानकों पर गहन पुनर्विचार करने का आह्वान किया है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले सत्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि G20 ने वैश्विक वित्त और विकास को आकार दिया है, लेकिन वर्तमान मॉडल ने बड़ी आबादी को संसाधनों से वंचित रखा है। उन्होंने कहा कि इससे प्रकृति के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा मिला है, जिसका असर विशेष रूप से अफ्रीका में दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों को आगे बढ़ाया गया है। श्री मोदी ने कुशल प्रवासन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, AI, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने भारत की सभ्यतागत ज्ञान परंपरा पर आधारित समग्र मानववाद की अवधारणा का उल्लेख किया, जो विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखने का मार्ग दिखाती है। उन्होंने एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की परिकल्पना को मूर्त रूप देते हुए अपने संबोधन में चार प्रमुख प्रस्ताव भी रखे। श्री मोदी ने G20 के तहत एक वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार स्थापित करने का प्रस्ताव भी रखा। शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी और कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी के साथ बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें आज ऑस्ट्रेलिया कनाडा भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार ACITI साझेदारी की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैर स्टार्मर से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ भी चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सरकार लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए लोगों के कौशल और क्षमताओं का उपयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी के प्रशांति निलयम में श्री सत्य साई बाबा की शताब्दी के उपलक्ष्य में विशेष सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही।
भारत सरकार ऐसे अनेक कदम उठा रही है जिससे देशवासियों का जीवन सुगम और सरल हो तथा वे अपनी प्रतिभा और क्षमता का उपयोग देश के विकास में कर सके। भारत सरकार के इन प्रयासों में सभी धर्मार्थ संस्थाओं, NGOs, प्राइवेट सेक्टर्स और नागरिकों को योगदान देना चाहिए। आपका योगदान भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में सहयोग सिद्ध होगा।
तेलंगाना में प्रतिबंधित गुट CPI माओवादी के 37 सदस्यों ने आज हैदराबाद में आत्मसमर्पण किया। इनमें राज्य कमेटी के 3 वरिष्ठ सदस्य और 25 महिलाएं शामिल हैं। तेलंगाना पुलिस महानिदेशक बी शिवधर रेड्डी के सामने इन माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले राज्य कमेटी के सदस्यों को सहायता राशि के तौर पर 20-20 लाख रुपए दिए गए हैं। श्री रेड्डी ने बताया कि उनके बीच 1,41,05,000 रुपए की कुल सहायता राशि वितरित की गई। केंद्रीय हज समिति ने आज मुंबई में आयोजित बैठक में हज 2026 के लिए भारतीय हज यात्रियों के सफर को बेहतर और सरल बनाने के उपायों पर विचार विमर्श किया। बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने हज समिति को निर्देश दिया कि वे हज यात्रियों के सभी लंबित बकाया का 75% तुरंत वापस कर दें, शेष 25% का भुगतान सत्यापन के बाद किया जाएगा। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में गंभीर वायु गुणवत्ता को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए चरणबद्ध कार्रवाई योजना में संशोधन किया है। आयोग ने GRAP 4 के उपायों को अब GRAP 3 के अंतर्गत लागू करने का फैसला किया है। इन उपायों में सरकारी, निजी और नगरपालिका कार्यालयों में 50% कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति का प्रावधान है। और खेलों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट पर 247 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के ट्रिस्टन स्टब्स ने सर्वाधिक 49 रन की पारी खेली, वहीं भारत की ओर से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। श्रृंखला में भारत 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।